ओम शांति। हम सभी के 84 जन्म ही सफल हो गए। क्यों? गहरा प्रश्न नहीं है, गंभीर नहीं। हाँ बोलो, माताओं के मुख से। हमारे 84 जन्म ही सफल हो गए क्योंकि, अब बोलो ना उमंग से, कोई नशा नहीं। अंत में भगवान मिल जाए, 5000 साल की यात्रा पूरी हो रही हो और भगवान वेलकम करने आ जाए, कितना अच्छा। आज की मुरली में बाबा की एक बहुत अच्छी बात थी, जैसे मैं तुमसे वफादार हूँ। बोलो, याद है किसी को? मैंने बोल दी। बोलो, कौन बोलेगा? हल्दर भाई, बहुत अच्छी बात थी, जैसे मैं तुमसे वफादार हूँ वैसे ही तुम्हें भी वफादार होना है। क्या वफादारी गड़बड़ करते हैं बच्चे? फारकती देते हैं, याद करो, पति पत्नी में होता है डाइवोर्स, वो भी बाबा प्रियतम है, उसको भी डाइवोर्स दे देती हैं सजनियां, और फारकती देते हैं। बाबा नहीं देता कभी किसी को, बाबा तो लेकर जाएगा ही। तो हमारी 84 जन्मों की यात्रा सफल हो गई। उन लोगों की सफल नहीं है जो अभी दुविधाओं में जीवन जी रहे हैं। तो बाबा ने हमारी यात्रा को सफल किया और हमें क्या करना है? अब उत्तर देना है, मैं लेक्चर देता नहीं रात्रि क्लास में। हमें क्या करना है बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट। क्या उमंग है कन्याओं के मन में? ये तो बड़ी बात है, कहते आ रहे हैं 50 साल से, कोई बना नहीं। कुछ अच्छी बात बताओ, और ये सबसे अच्छी है, थोड़ी से कम बताओ। बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, इससे पहले हमें वो सब कुछ करना है जो बाबा हमें कहकर गए हैं। ये वफादारी है उससे, ये उससे हमारा प्यार है। कोई कहे मेरा बाबा से बहुत प्यार है, गीत गाते रहे रोज, मेरा तो, और मानते रहे दूसरों के, तो बाबा कहेगा दूसरा न कोई, या दूसरे ही हैं कोई। तो बाबा जो हमें कहकर गए हैं वो अब हमें करना है। क्या क्या कह के गए हैं? निर्विघ्न बनना और सबको बनाना है। हमें विशेष रूप से माताओं को, अपने अपने घरों को, और जो समर्पित हैं उन्हें यज्ञ को निर्विघ्न बनाना है। विघ्न डालने नहीं हैं, विघ्न खत्म करने हैं। और क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थियों को बाबा बहुत प्यार करता है, उन पे नजर रहती है बाबा की, कौन कौन मेरे बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं। लौकिक में आप देखो, माताएं देखें अपने घरों में, आपका कोई छोटा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार हो, माताएं क्या करेंगी उसे? प्यार तो करेंगी ही और मदद बहुत करेंगी या नहीं? कहीं उसे भी काम करना हो कहेंगे तुम छोड़ो हम कर देते हैं, कहेंगे या नहीं? ये सच्चा प्यार भी है। और अगर बच्चे पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं तो उसको सब पूरी मदद करते हैं। बाबा भी उन आत्माओं को बहुत मदद करते हैं जो उसके कहे अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि देखो, बाबा जब से अव्यक्त हुए बहुत साल तक, मैं कह सकता हूं 30-35 साल तक सदा खुश रहो, ये बाबा का टॉपिक नहीं था। और पिछले 10-15 सालों से यही टॉपिक है, हर मुरली में इस बार बाबा ने पिछले साल भी ये कहा ही, सदा खुश रहो, क्योंकि खुश रहना कठिन होता जाता है। एक धारणा, विघ्नों को नष्ट करके निर्विघ्न जीवन जीना है। पहले अपना जीवन निर्विघ्न। और एक और बात ले लें बस, व्यर्थ से मुक्त। जो व्यर्थ से मुक्त है वो निर्विघ्न है। निर्विघ्न जीवन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे केवल अभी। माताओं को अगर अपने घरों को निर्विघ्न बनाना है, विघ्न तो हैं सबके पास, बच्चों के हैं, लेकिन अपनी स्थिति निर्विघ्न होगी तो सबके विघ्न दूर करना सीख जाएंगे। और निर्विघ्न जीवन जीने के लिए सहज भाव से चलना, सरलता, संतुष्ट होकर जीवन में रहना दूसरी बात, रोज अमृत वेले अपने घर में ज्योति जगने जगती रहे, इसका अर्थ तो समझते हैं ना, योग की ज्वाला ज्योति जगे रोज सवेरे, स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यासों, सबके लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ चित्त हो, जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलें। क्योंकि हम कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए चलते चलते, और अब दूसरी जगह कहाँ पहुंच गए चलते चलते, कलयुग के एकदम अंत में, अंत में नहीं एकदम अंत में, जब ये खेल पूरा होने की तैयारी कर रहा है अब, तो समय नाजुक आता जाएगा। याद है पिछले साल की मुरली, हर मुरली में कहा समय नाजुक आ रहा है, तेजी से आता जाएगा, हम कहां प्रवेश कर लेंगे बहुत जल्दी, विनाश काल में। ये तो नहीं होगा ना कि विनाश होगा ही नहीं, बाबा तो कहता ही आया है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं ना, हम तो सुनते सुनते थक गए, कई कहते हैं, मुझे भी कहते हैं परिवर्तन होगा, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा, कई कहते हैं हम तो थक गए सुन सुन के, पता नहीं कब होगा, लगता तो है ना संसार में दुख है। लेकिन इससे पहले क्या होना है, विनाश से पहले सभी को अपने अपने कर्मों को, मैं वो शब्द नहीं बोलता, नहीं तो माताएं भारी हो जाती हैं, मैं चेहरे देखता हूं ना सबके, सभी आत्माओं को अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। वो प्रारंभ हो गया है, मैं क्लासेज में सुनाता रहता हूं एक बात बाबा की, अव्यक्त बाबा ने कहा था, सभी के हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बड़ी सूक्ष्म है, प्रारंभ हो गई है अब, चाहे वो आपका बच्चा है, अति प्रिय है, उसे अपना हिसाब किताब चुकतू करना होगा या नहीं, क्या विचार माताओं का, या उसकी जगह आप कर लोगी, कोई बीमार हो गया कहे नहीं तुम न हो हम हो जाते हैं, चलेगा, कहने से कुछ होगा नहीं, जिसका हिसाब किताब है उसे ही चुकतू करना होगा। और अगर हमें उससे बहुत प्यार है तो क्या करना होगा, सकास की मदद, ताकि वो हिसाब किताब चुकतू करने में सहजता का अनुभव करें। हिसाब किताब केवल बीमारियों के रूप में नहीं आएंगे, सबसे खतरनाक चीज होगी, बोलो, मैं तीन बातें सुनाता रहता हूं और अब वो सबको सुननी सुनानी और उसमें अपने को संभालना है। बाबा ने 83 था या 84 था जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, 84, हमारा भी एक ग्रुप घूमने के लिए बस भर के राजस्थान में गया हुआ था, एकदम हंगामे शुरू हो गए, सिखों पर अटैक होने लगे, सबको वापस बुलाया, कोई फंस गए थे कहीं, बाबा की मुरली चली दो चार दिन के बाद, कहा जिनके कड़े कर्मों के हिसाब किताब होंगे तीन तरह से चुकतू करेंगे। ये सब कुछ जानना है और स्वयं को इससे बचाना है, सब को जान लेना चाहिए। पहला तरीका बोलो, मैं यहां बहुत सुनाया है, मन के रोग, साइकेट्रिक पेशेंट बनेंगे लोग, ब्रेन की बीमारियां जो तेजी से बढ़ रही हैं। और मैं युवकों को बहुत सावधान करता हूं, वो युवक जो बुरे संग में किसी से भी प्यार कर रहे हैं, समझ गए ना मेरी भाषा, आजकल ये बहुत चल रहा है युवकों में, आप कितना भी उन्हें समझाओ अपनी लड़की को वो नहीं मानेंगी, वो सभी 5 साल में डिप्रेशन में आ जाएंगे और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। डिप्रेशन प्रारंभ हो रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। कर लो भाई सभी अपने अपने मोबाइल बंद, माताओं को मदद करो ढूंढवाने में, भाई ढूंढना भी मुश्किल है ना माताओं का, पर्स में पर्स कितनी जगह से खोलना पड़ता है। चलो पहला काम होगा मानसिक बीमारियां जिनके कड़े हिसाब किताब हैं और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं तो पिछले 1 साल से देखता आ रहा हूं, अनेक लोगों को बिना कारण के ही डिप्रेशन हो रहा है। डॉक्टर अगर पूछते हैं कारण क्या है, कारण कुछ नहीं है, हम तो ठीक ठाक हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। आज मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर बता रहे थे कि जितने पेशेंट आते हैं दिखाई देता है किसी को 20%, किसी को 30% डिप्रेशन का अंश दिख रहा है सब में। और ये सब युवक जो गलत कार्यों में लगे हुए हैं, जो समझते हैं काम वासना ही सब कुछ है, खोल के बता देता हूं, गीता में है, जिसने गीता पढ़ी हो, मुश्किल ही पढ़ी होगी आप में से, गीता में बहुत सुंदर महावाक्य है, जो लोग काम को ही सब कुछ समझते हैं वो, बहुत अच्छे शब्द हैं, विनाश के लिए संसार को तैयार करते हैं। तो काम को ही सब कुछ मानने वाले युवक अब डिप्रेशन की ओर बढ़ेंगे तेजी से। 1-2 साल वो इसका जो सुख जिसे वो समझते हैं लेंगे और फिर होगा उनका दुखों का भयानक काल शुरू, जिसको कोई संभाल नहीं पाएगा। एक दूसरा भयानक विकर्मों का परिणाम क्या होगा, दूसरा आप सब जानते हैं, इविल सोल्स का इफेक्ट, बॉडीलेस सोल कहते हैं विदेशों में, भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप, वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तीसरा रात को नींद ना आना, बिना कारण के ही हो रहा है। आजकल हम बिल्कुल फ्रेश, नींद आ रही थी, सोने गए तो बिल्कुल फ्रेश हो गए, नींद आ रही है चले सोने और बिस्तर पे लेटते ही ब्रेन बहुत एक्टिव हो गया, क्या हम सोच रहे हैं ये हमें पता नहीं, नींद नहीं आ रही, घड़ी देख रहे हैं, पता है ना रात को नींद ना आना कितना भयानक रूप है, सबसे कठोर सजा है ये। जब सारा संसार सुख से सोता है तब कोई जगता रहे वो बहुत भारी चीज है। इन तीनों से बचने के लिए हमें क्या करना है, किसी ब्राह्मण को ये समस्या ना हो, ब्राह्मणों को हो रही है क्योंकि ब्राह्मण भी तो वहीं से आए हैं ना, कलयुग से ही आए हैं ना, सत्ययुग से थोड़ा ही, बहुतों को होता जा रहा है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी हो रहा है, इससे भी हमें बचना है। क्या है स्पिरिचुअल डिप्रेशन, सुना है ये शब्द कभी आपने, रूहानी डिप्रेशन, ये टेंशन ज्ञान में चलते हुए 40 साल हो गए कुछ किया ही नहीं, अनुभवी नहीं हुए, डिप्रेशन ये अलौकिक डिप्रेशन है, एक अच्छाई के कारण कि अरे 40 साल हो गए। एक का मुझे फोन आया, 3 दिन पहले की बात है, मीटिंग में मैं फोन खोलता तो नहीं था पर 1 घंटा सवेरे खोल देता था, कहा मैं बहुत दुखी हूं और रोने लगी बहन जी। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ, बस मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या हुआ, बहुत समय से ज्ञान में हूँ मैंने कुछ नहीं पाया, फिर रोने लगी। मैंने कहा कुछ तो बताओ, तुम्हें समाधान बताऊं, मैंने बहुत पाप कर लिए। अरे भाई पाप क्या हो गए, तुमसे ज्ञान में रही हो, सूक्ष्म पाप का मैंने सूक्ष्म पाप बहुत कर लिए। फिर एक दो मुझे बताया, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने उसको जरा उमंग दिलाई कि कोई बात नहीं, अभी समय है, ये जागृति आना ही कि मैंने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, जगो अब कदम आगे बढ़ाओ, अभी भी हाथ से समय गया नहीं है, है अभी हाथ में है, करो। तो मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत खुश रहना। जब बहुत खुश रहेंगे, जब बहुत हल्के रहेंगे, जो स्वमान में रहेंगे, मानसिक रोगों से मुक्त रहेंगे। स्वमान हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है, मन को सुंदर स्थिति में लाता है, और हम इन चीजों से मुक्त रहते हैं, मानसिक रोग आएंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं, सदा खुश रहो। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं नजदीक के, जो बातें जाने वाली हैं उनसे तुम अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ते हो। याद है सभी को, सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी न जाए, कितना महत्व दिया बाबा ने। भगवान को कैसा लगता होगा जब वो ये देखता होगा मेरे बच्चे खुश नहीं हैं, तो किसके बच्चे खुश होंगे, कि रावण के बच्चे भी खुश हैं, और मेरे बच्चे खुश नहीं तो भगवान को भी लज जाएगी ना, कि तो रावण ही मुझसे पावरफुल हो गया, तो वो भी तो सोचेगा ना अपने बच्चों को सुखी बना दूं मैं। सभी अच्छी तरह इस पे ध्यान देंगे, कौन सा संकल्प, किसी का कौन सा व्यवहार, या हमारे अपने ही संस्कार, या हमारे अपने ही व्यर्थ संकल्प हमें खुश नहीं रहने देते। चेक करना है पहले, क्या है हमारे अंदर जो हम खुश नहीं रहते। कई लोग नहीं रहते, चेहरों पे दिखता है कि वो खुश नहीं रहते, दूसरों को देखने से खुश नहीं है, प्रदर्शन से खुश नहीं है, बहुतों का यही हुआ है, उनका पूरा जीवन पर चिंतन में बीत गया। माताओं की जब फोन मुझे आते हैं, रोज दो चार फोन ऐसे अवश्य आते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं पूछता हूँ धीरे धीरे, पहले तो उन्हें जरा खुश करता हूँ, परेशान ना हो, धीरे धीरे पूछता हूँ समय कैसे बिताया है संगम का। हूँ तो ज्ञान में 20 साल से, मैंने कहा योग कितना हुआ, 20 घंटे हुआ 20 साल में या नहीं, सोचने लगती है 20 साल में 20 घंटे, ये मुझे कहाँ से याद आया। हमारे इस पार्क में वो कोई रिसर्च का काम करते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जुड़ के, तो उन लोगों की कई ग्रुप बनाए, तो एक ग्रुप ऐसा बनाया जिन्होंने पूरे जीवन में 10,000 घंटे से ज्यादा योग किया है, उनके ब्रेन की चेकिंग करेंगे, तो वो करते हैं। तो मैं भी पूछता हूँ कि 20 साल में 20 घंटे योग हुआ है, आखिर धीरे धीरे बताती हैं बहुत परचिंतन किया हमने, जो थोड़ा बहुत किया भी होगा 20 घंटे वो भी खत्म कर लिया, बचना है इससे। अगर आत्मा वीक होती है तो क्या होता है, भटकती आत्माओं का इफेक्ट हो जाता है, ये सब को ध्यान रखना है। जिनका मन वीक होगा, जिनके मन में इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी हो गई या नहीं, व्यर्थ संकल्प चलाते रहना, परचिंतन करते रहना, ये बड़ी इम्प्योरिटी है, ऐसी आत्माओं पर भटकती आत्माएं कब्जा कर लेती हैं। उन्हें अच्छे लोग भी तो चाहिए, पवित्र हैं यही अच्छे हैं, इनका ही घर अच्छा है, इनके घर में रहेंगे, तो बच के रहना है, किसी को अपना घर किराए पे नहीं देना है, ये नहीं सोचना किराया मिलेगा कष्ट मिलता है। एक में एक आत्मा आई थी, उसी की मैं बात बता रहा हूँ, एक टीचर बहन में आत्मा मेरे पास ले आई, मुझे तो पता नहीं था कौन है, सभी आते हैं मिलने, मैंने कहा बोलो बहन जी, अब वो आत्मा बोलने लगी, मैं इसके मकान में आ गई हूँ। मैं कहा मकान में आ गई, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, अब मैं ये सुनने के लिए तो तैयार नहीं था ना, मैं तो सोचा था बहने आई हैं भाई, कुछ मिलने होंगी, कुछ बात करने आई होंगी, मुझे समझ में आया। मैंने कहा फिर बोलो, मैं इसके मकान में आई हूँ। मैंने कहा क्यों आई तुम? कि ये बहुत अच्छी है। मैं कहा तुम्हें भी अच्छे लोग चाहिए? कहा बहुत शांति मिलती है इसके तन में रहने से। फिर मैंने उसको विधि बताई, कुछ उसे ही बताई, मेरा बाबा बोलो, लगातार जो बुलवाया तो आत्मा चली गई। तुम्हें बाबा पुनर्जन्म देगा, अपने घर में रहो ना, दूसरे के घर में रहने से सुख थोड़ा ही मिलता है, किराए पे रहने से क्या मिलता है? वो कभी भी कह देगा छोड़ो मेरा मकान, तुम्हें अपना घर चाहिए ना। तैयार हुई तो बहुत बच के रहना इन आत्माओं से, बहुत भटक रहे हैं और उन्हें अच्छे घर चाहिए। क्या अभ्यास करेंगे? कोई भी भटकती आत्मा हमारे पास ना आए, हमारे द्वार पे ना आए। कौन सा अभ्यास? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, संसार का सबसे शक्तिशाली संकल्प है ये, है या नहीं? एक शक्तिशाली है शिव बाबा और दूसरे हम, दूसरे दम नहीं है आपके बोल में, दूसरे है ना, हम में भी वो जो मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस नशे को बहुत बढ़ाना है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, इसलिए एक छोटा सा नियम रख लें सभी, आदत बना लें, आंख खुलते ही सोते समय 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। साथ में दोनों बार संकल्प कर देना, हमारा संपूर्ण यज्ञ विघ्नों से मुक्त हो जाए। माताएं अपने परिवारों के लिए भी करें, मेरा परिवार विघ्नों से मुक्त हो जाए। ये काम रोज करना सबको। करेंगे या माताएं भूल जाएंगी या टीवी देखते हुए सोएंगे? टीवी तो कोई नहीं देखता होगा, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। तो बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये भटकती आत्माएं आपके पास नहीं आएंगी। खासकर सोते समय माताएं भूलेंगी नहीं, सभी भाई अपने अपने घरों में शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाकर ही सोएंगे। आगे समय ऐसा आ रहा है जब इन आत्माओं का प्रकोप हो जाएगा संसार में, हम सभी को इन्हें शांति भी देनी होगी और अपने को सुरक्षित भी करना होगा। सुरक्षित करने का ये तरीका, और फिर सकाश देने से ये आत्माएं शांत होकर ऊपर की ओर जाने लगेंगी। परम धाम कैसे जाएंगी आत्माएं? चित्त शांत होने लगे, और जिस घड़ी उन आत्माओं का चित्त शांत, जीरो थॉट, नो थॉट, कोई संकल्प नहीं, उस टाइम परमधाम की ओर उड़ान भरेंगी। तो ये काम हम सबको करना होगा। नींद ना आना, क्या करेंगे इसके लिए? बहुत बुरी सजा है। 3 बातें मैं कहूंगा आप सबको। एक तो अपने जीवन में पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। जिन्होंने दूसरों को बहुत सताया है उनको ये फल मिलता है कि रात को सुख नहीं मिलेगा। अब की बात नहीं, पूर्व जन्मों में भी। इसलिए वर्तमान हमारे हाथ में है, हम पुण्यों का खाता बढ़ाएं, पाप से बचें। कौन सा पाप ब्राह्मणों से हो सकता है? एक तो आज की मुरली में था, बहुत सुंदर उत्तर। कौन सा पाप हो सकता है ब्राह्मणों से या होता है? बोलो ब्राह्मण बैठे सब। बुरी दृष्टि। आज क्या था मुरली में? सबसे बड़ी मंजिल आत्मिक दृष्टि, देह की ओर, देह का आकर्षण, देह के संकल्प समाप्त हो जाएं। ऐसी आत्माएं ही विश्व के मालिक बनती हैं। यही आत्माएं विजय माला में सुशोभित होती हैं। ये साधना है, जो ये कर ले उसकी वर्तमान स्थिति भी बहुत सुंदर हो जाती है। अनेक समस्याएं इससे स्वतः ही नष्ट हो जाते। दूसरा पाप, बस दो की चर्चा करेंगे हम। एक देह की दृष्टि पाप हो गया, देह का चिंतन होगा, देह की भासना आएगी, संकल्प चलेंगे, ये सूक्ष्म पाप ब्राह्मणों से होता है। दूसरा, किसी को दुख न देना, ये पुण्य है। सुख देना, देखो जब से भगवान इस धरा पर आया तो उसने इस बात पर सबका ध्यान दिलाया, किसी को दुख न दो। फिर आगे बात कही न लो, लेकिन देने से हम बचेंगे। ये दो सूक्ष्म पाप, कोई किसी को सताने लगे, उसको अच्छा पुरुषार्थ करने ही न दे। देखो खोल कर एक बात बता दूं, कल एक कन्या मेरे पास आई, जा रहा था मैं रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे जरूरी बात करनी, मैंने उसका चेहरा देखा तो उससे बात की। कैसा चेहरा था उसका? उदासी से भरा हुआ, उलझनों से भरा हुआ, छोटी कन्या। मैंने कहा क्या है तुमको, बताओ। जो उसने बताया वो कोई खतरनाक बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि मुझे मुरली भी नहीं पढ़ने देते, मैं बाबा के रूम में बैठूं तो बैठने नहीं देते, कहते हैं यहां तुम सेवा के लिए आई हो, मुरली पढ़ने को अपने घर जाओ। मैं जिसलिए आई थी कुछ नहीं कर पा रही हूं, क्या करूं मैं, न मुझे योग करने देते, बस झाड़ू बोचा बर्तन। हमारा वो एक गीत है ना, सखीरी मैंने, तो हमारी दादी और वो पांडव भवन दिल्ली में एक बहन था, तो एक भाई ना पोचा लगाता था, तो उसने इस गीत को ऐसे टर्न कर लिया था, सकीरी मैंने पायो तीन रतन, झाड़ू पोचा और बर्तन, कुछ ऐसा था ना, ऐसा ही था ना, दादी सुनाया करती थी क्लास में। तो कहा मुझे यही सेवा दे दी और कुछ नहीं करने देते, मैं बीकॉम किया है, मैं क्या करूं। बेचारी के चेहरा देख के पता चल रहा था आत्मा कितनी पीड़ित हो रही है। तो जो उसे पीड़ा दे रहे हैं वो सुख पाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे इस पीछे सदा ही कोई लगार थोड़ा ही रहता होगा, मुरली पढ़ लिया करो चुपचाप। कहा नहीं, ये कन्या को मेरे पीछे छोड़ा हुआ। मुझे बड़ी हैरानी है, क्या बताऊं। मैंने उसे कहा फिर भी कर्म करते तो कोई तुम्हें बांधेगा नहीं ना, ये अभ्यास कर लिया करो। मैंने उसे सिखाए, ऐसी आत्माएं क्या सुख पाएंगे जीवन में जो दूसरों को पुरुषार्थ नहीं करने दे रही हैं, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको ये आभास नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो सोचते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बुद्धि बंद होने का स्वरूप है कि माया ने बुद्धि को ऐसा बंद कर दिया है कि ऐसे पाप करने वालों को ये पता ही नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। इसका परिणाम होगा नींद न आना। इसलिए जिन्होंने बहुत पाप कर लिए हैं, ये बड़े बड़े पाप तो पिछले जन्मों के हैं, अब के ये 100 गुना दंड दिलाने वाले पाप, उनको नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में आएंगे। इससे बचने के लिए पुण्य की पूंजी बढ़ानी है। और मैं एक बहुत अच्छी चीज लोगों को सिखाता हूं, वो आप भी सुन लें, और आज भी एक बहुत अच्छा परिणाम। मुझे 2 फोन आए आज, जिनको डिप्रेशन थे, नींद नहीं आती थी, 21 दिन ये काम किया और अब सुख से सो रहे। एक कन्या ही थी, नींद नहीं आती थी, मैंने उसे इतना ही कहा था 21 दिन रात को लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं 108 बार। 10 दिन लिखने के बाद ही उसे नींद आने लगी अच्छी। आज फोन किया, मैंने उसे कहा था 21 दिन के बाद मुझे बताना। कहा मेरी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, घर में भी शांति हो गई। ये चीजें इतनी अच्छी हैं कि वाइब्रेशंस बहुत अच्छे चारों ओर इनसे फैलते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका जो मैं सबको कराता हूं, आप भी कराएं, और आपको जरूरत हो तो खुद भी कर लें, नहीं तो सबको कराएं। उठते ही 108 बार लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जिसको भय होता है वो इसके बाद 2-4 बार संकल्प कर ले, मैं निर्भय हूं। जिसकी एकाग्रता नहीं होती उसके लिए ये बहुत सुंदर संकल्प है। अंदर में अनेक तरह की परिवर्तन आते हैं इस संकल्प से, और रात को मैं एक महान आत्मा हूं। तो हम सभी इन तीनों चीजों से बचेंगे, बहुत खुश रहना है हमें। मैं तो सोचा करता हूँ हम सबका ये साथ न जाने कब बिछुड़न में बदल जाए, होगा या नहीं, फिर कौन किसको पहचानेगा। तो क्यों नहीं साथ को ऐसा स्वीट बना दें, ऐसा लविंग बना दें, प्यार से भरा हुआ कि हमारे लिए भी ये सुखदाई हो जाए। मधुर संबंध, प्यार भरा व्यवहार बहुत बड़ी चीज है जीवन के लिए। सभी इस पे ध्यान देंगे, यहां कौन किसको क्या दे, कोई किसको क्या देगा। हम संबंधों में मधुरता और प्रेम, ये दोनों अपनी भावनाओं में बढ़ाएं बहुत ज्यादा, इससे हमारे पुण्य जमा होंगे और व्यर्थ से सभी को स्वयं को बचाना है। आज मैं आपको ध्यान दिलाऊं एक विशेष बात, जो कारण बनता है व्यर्थ का वो है भय। भय संसार में बढ़ता जा रहा है, बिना कारण बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग आजकल ये कहने लगे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम क्यों भयभीत हैं, बैठे बैठे डर लग रहा है। एक काज ऐसा ही फोन था, जो बैठे बैठे मैं डर रही हूं, क्या हुआ है मुझे, सब कुछ तो ठीक ठाक है, कोई डर की बात नहीं, डर लग रहा है अंदर में, हो रहा है मैं रो लूं। मैंने कहा रो लो, इसमें क्या है, कोई देखता तो नहीं ना, रोने से भी कई चीज ठीक हो जाती है, हो जाती है नहीं माताओं की, देखो माताओं ने कहा हो जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए माताओं को रोने की छुट्टी है बाबा की, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रोने से हल्के हो जाए तो अच्छा है ना, और भारी बने रहे हैं, रोना नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सुखी हमें रहना है, भय के कारण जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उस पर हमें विजय पानी है। किसका भय सबसे ज्यादा है मनुष्य को, मृत्यु का भय, आजकल बीमारियों का भय, कोई हमारा अपमान न कर दे इसका भय, कोई बुरी चीज न हो जाए परिवार में इसका भय। भय के अनेक तरीके हैं, भविष्य का भय, असफलता का भय, बहुत सारे भटकती आत्माओं का भय, फेल्योर होने का भय, इन सब से हमें स्वयं को बचाना है। इसके कारण बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। मैं पहले भी क्लास में सुनाया, इस बार अभी जो एग्जाम हुए तो कई बच्चों के ऐसे फोन आए कि एग्जाम को तो दो चार दिन रह गए हैं, हम बहुत डर रहे हैं क्या होगा, और इस डर ने हमारी एकाग्रता नष्ट कर दी है, जो याद किया था वो भी भूल रहे हैं, तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है ना। माताएं फोन कराती हैं, मेरी लड़की बहुत भयभीत है, 5 दिन के बाद पेपर हैं, क्या करें, बिल्कुल डर रही, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो भी ठीक से नहीं पाती है, टेंशन में है, ये डर है ना। मैं उन्हें सिखाता हूं, कुछ कुछ बच्चों का भय निकल जाता है और बहुत अच्छा परिणाम रहता है। भय के कारण जो संकल्प होते हैं उसका निवारण कैसे करेंगे, कोई 5 बातें निकाल लें बस। भविष्य का भय, जो होगा अच्छा होगा, हमारे साथ तो स्वयं भगवान है, हमारे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं, सब अच्छा अच्छा होगा, जब हमने किए ही पुण्य कर्म हैं, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मृत्यु का भय, कैसे होता है ब्राह्मणों मृत्यु का भय, वैसे तो ब्राह्मण मरने से नहीं डरते, पर कैसे डरते हैं, नहीं मृत्यु के भय से कैसे डरते हैं, प्रैक्टिकल बात, अरे फलाने फलाने को देखो मरने से पहले हॉस्पिटल में कितने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, मेरा भी कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुतों का ये संकल्प आता है। फलाना 50 साल से ज्ञान में, देखो हॉस्पिटल में क्या हाल है, हम तो 10 साल से ज्ञान में, हमारा क्या होगा, तो जरूर थोड़ा है उसका जो हुआ वो तुम्हारा भी होगा। हम सब मधुवन वाले अच्छी तरह जानते हैं, कई साधारण माताएं अमृत वेले फट से शरीर छोड़ा 4 बजे, कितनी माताएं साधारण जिनको कोई नहीं जानता, रात को सोई सवेरे उठी नहीं। कितने भाइयों ने बाबा के कमरे में योग करने गए थे, शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारी नहीं। तो ये जरूरी नहीं जो दूसरों के साथ हो रहा वो हमारे साथ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे भयभीत होने की बात नहीं है, ये सबका अपना अपना कर्मों का खेल है, पार्ट है ड्रामा में। हम क्या संकल्प करें अभी से, अपनी मृत्यु का प्रोग्राम दे दो माइंड को, ये बहुत सुंदर एक टेक्निक है, कमांड दे दो, प्रोग्रामिंग कर दो, मेरी मृत्यु ऐसे होगी। कैसे होगी सोच लो सभी, और अच्छा सोच लो, बाबा के कमरे में, कमरा खराब हो जाएगा, धोना पड़ेगा। सोच लो सभी, सेवा करते करते रोटी बेल रहे हैं और गए, ऐसे ही रह गया बेलन, गए, ये भी अच्छी बात। और बोलो भाई, बोलो, माताओं ने अच्छे उत्तर दिए। मुरली सुनते सुनते ज्ञान अमृत पड़ रहा है कानों में और गए, ऐसा भी कईयों के साथ हो चुका है अब तक। तो अपना एक प्रोग्राम बना दो मृत्यु का, और प्रोग्राम भी तो बनाते हैं ना हम, बाबा की याद में बैठे होंगे, सबसे अच्छी मृत्यु क्या होती है, बाबा की याद में बैठे हों, स्मृति स्वरूप हों। स्मृति स्वरूप क्या है, बाबा ये देह छोड़कर मैं आत्मा आई आपके पास, और इस संकल्प के साथ देह छोड़कर बाबा के पास जाएं, ये है सर्वश्रेष्ठ मृत्यु, इच्छा मृत्यु भी इसे कहते हैं। अचानक शरीर छूट जाना, बिना कष्ट के छूटना, वो सेकंड अच्छी बात, वो भी फर्स्ट क्लास मृत्यु है, लेकिन उसका नंबर सेकंड है। और तीसरा ये है कष्ट पाकर छोड़ना। तो हम एक प्रोग्राम दे दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कमांड देते, इसको प्रोग्रामिंग करना कहते हैं, मेरी मृत्यु ऐसे होगी, आनंद पूर्वक बिल्कुल स्वस्थ योग में बैठे हुए, बाबा से बातें करते हुए, स्मृति स्वरूप होते हुए, यानी जगते हुए, मन भी जगा है, तन भी जगा है, ऐसे में जैसे ब्रह्मा बाबा की हुई। किसी भी चीज का भय हमें रखना नहीं, भूत प्रेतों से डरना नहीं है, डरते हैं कई लोग, और जो इनसे डरते हैं वो इनका पीछा करते हैं, और जो निर्भय होते हैं ये उनसे दूर भाग जाते हैं, ये सिद्धांत याद रखना है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, ये अभ्यास करके अपने को निर्भय बना देना है। संसार में जब मौत का खेल तेज होगा, बाबा के शब्दों में होलसेल मौत होगी, होलसेल माना एक साथ बहुतों की, आजकल भी रोज कितने लोग मरते हैं, 2 लाख से ज्यादा, ये तो पहले के आंकड़े थे, 2.5 लाख जन्म लेते हैं, 2 लाख मरते हैं एक दिन में, और जब होलसेल मौत होगी, ये होती है सारी दुनिया में, किसी ने कहीं शरीर छोड़ा, किसी ने कहीं छोड़ा, ये होलसेल मौत होगी एक जगह की, बहुत सारी, पूरा पूरा शहर नष्ट हो गया, पूरा शहर नीचे जमीन में धंस गया, सब कुछ खत्म हो गया। इनसे भी डरना नहीं है, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, सबको वापिस चलना है, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, साक्षी भाव बढ़ाते चलेंगे तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होते रहेंगे। जो हो रहा है वही होना है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। इस तरह के चिंतन के द्वारा अपने को व्यर्थ से मुक्त करना है, निर्विघ्न रहकर विघ्न विनाशक बनना है। थोड़ी भी बाबा की आत्माएं इस संसार में अगर विघ्न विनाशक बन जाएंगी तो संसार को विघ्नों से मुक्त करने में बहुत बड़ा काम करेंगी, मदद करनी है हमें संसार की आत्माओं को। ओम शांति। अभी इसी तरह योग अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ, किरणें फैल रही हैं हमसे चारों ओर, शक्तियों की जो सबके विघ्नों को नष्ट करती हैं।
प्रभु का ध्यान।